नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी में। कहते हैं कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। कोशिश हमारी ये है कि जीवन के हर पल को उत्सव के रूप में जिए, लेकिन कई बार मुमकिन नहीं हो पाता। कई मोड़ ऐसे आते हैं जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, खासकर तब जब हम विक्टिम्स बन जाते हैं। डिप्रेशन की इस जो पूरे एस्पेक्ट पर हम बात करते आ रहे हैं, उसमें हमने विक्टिम्स के ऊपर बात की थी कि किसी हादसे के अगर हम शिकार हो जाते हैं तो किस तरह से डिप्रेशन का एक पूरा दौर चलता है, उससे कैसे हम बाहर निकल सकते हैं। उसमें कहीं ना कहीं कार्मिक थ्योरी भी काम करती है और कहीं ना कहीं फॉरगिव एंड फॉरगेट का जो पूरा एस्पेक्ट है वो भी काम करके हमें उस डिप्रेशन के दौर से बाहर निकाल सकता है। आज इसी को थोड़ा और बढ़ाते हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। अ वेरी वार्म वेलकम सर।
नमस्कार।
नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका स्वागत।
ओम शांति।
ओम शांति। हमने डॉक्टर पटेल कई तरह के विक्टिम्स के ऊपर बात की थी पिछली कड़ी में, अगर हमें याद हो तो देखें तो हमने इनफैक्ट रेप विक्टिम्स के एस्पेक्ट को भी लिया था कि किस तरह से माफ करके फिर ही हम भूल पाएंगे और भूल के जिंदगी को आगे बढ़ाना है। आज हम शुरुआत करते हैं एक मेल से। सिस्टर शिवानी, इतने मेल्स आए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें जो हैं वो टच कर रही हैं, एहसास हो रहा है। एक ये मेल आया है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा और ये चाहती है कि नाम आप ना लें मेरा, लेकिन ये कह रही है कि मैं पिछले 20 सालों से मैरिड हूं और कहीं ना कहीं मेरी प्रॉब्लम चल रही थी हस्बैंड से। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता था कि हस्बैंड जो है वो क्यों मुझे विक्टिमाइज करते थे, क्यों मेरे साथ बुरा बर्ताव करते थे, जबकि हमारी लव मैरिज थी, हम एक दूसरे को स्कूल के टाइम से जानते थे, वो उनके फैमिली फ्रेंड थे। और कुछ वक्त पहले ही उन्हें ये बताया है उनके हस्बैंड ने खुद कह के कि ये जो लेडी है इनके फादर ने बचपन में या जो भी जिस भी उम्र में ये मिले होंगे, 12th में होंगे, इनके हस्बैंड को विक्टिमाइज किया था। ही वॉज अब्यूज्ड बाय हिज फादर इन लॉ। इट वॉज अ मेजर शॉक फॉर द गर्ल ऑल्सो, फॉर दिस लेडी ऑल्सो। एंड शी सेज कि अब मैं इतने डिप्रेशन में हूं, मेरे को अपनी पिछले 20 साल की जिंदगी भी याद आती है कि मैं किससे गुजरी कि, और मेरे हस्बैंड भी अगर इससे गुजरे तो वो बहुत पेन में गुजरे। एक तरफ मेरे फादर हैं, एक तरफ मेरे हस्बैंड हैं, एंड मैं क्या करूं। इतना मेजर डिप्रेशन मुझे सीप इन कर गया है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या मैं विक्टिम हूं, मेरे हस्बैंड विक्टिम है या कौन विक्टिम है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब?
कहीं इतना मल्टी फैक्टोरियल इनफैक्ट ना, कहीं इश्यूज को देखना पड़ेगा इसमें। एक तो जो उनके हस्बैंड है उनकी पर्सनालिटी डिफेक्टिव, मे बी बिकॉज ऑफ अब्यूज, लेकिन पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं वो परवर्जन आया है कि जिसके कारण वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अब ये महिला को क्या करना चाहिए, रादर नो शी हैज अ गुड सिचुएशन इनफैक्ट, कि हस्बैंड के प्रति एक सिंपैथेटिक अगर एटीट्यूड हो कि भी उनके सामने ऐसा व्यवहार हुआ इसके कारण उसके नेचर में ये बातें आ गई, और साथ साथ में भल जो भी हुआ है उससे तो कुछ कर नहीं सकते। नहीं, फादर की जो टेंडेंसी थी तो उसके बारे में ज्यादा सोच करके डिप्रेस होने से फायदा नहीं है, उल्टा इस सारी सिचुएशन को कुछ हद तक एक्सेप्ट करे, हस्बैंड के प्रति एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड वास्तव में करे, एम्पैथेटिक एटीट्यूड रखे, उसके साथ डील करे। उनको भी काउंसलिंग की जरूरत है। नहीं, जो उसके हस्बैंड है उन्हें अगर ठीक से काउंसलिंग कराया जाए तो सारे सिचुएशन का एक पॉजिटिव आउटकम हो।
मुझे लगता है कि लेडी से ज्यादा शायद हस्बैंड को ही बातचीत।
हाँ, बात नहीं, लेडी को भी जरूरत है। हाँ। ये नहीं, उसको जरूरत नहीं है, बिकॉज नो शी माइट हैव अ डिफरेंट गिल्ट भी हो सकती है, मेरे फादर ऐसे, नो दैट गिल्ट फीलिंग कैन बी देयर। शी माइट हैव अ फीलिंग ऑफ रिवेंज ऑल्सो, कि मेरे हस्बैंड ने पहले क्यों नहीं बोला, 20 साल पहले बोल देते तो हम उसको रिजॉल्व कर लेते ठीक प्रकार से। तो लाइक नो शी ऑल्सो नीड गुड डील ऑफ काउंसलिंग,
फीलिंग ऑफ हेट्रेड ऑल्सो फॉर द फादर
इज पॉसिबल, या फादर के प्रति हेट्रेड
पॉसिबल। एक्चुअली वही क्या, अल्टीमेटली शी शुड एक्सेप्ट इट दैट इट कैन बी, इट माइट बी अ कार्मिक डेथ समवेयर।
नहीं, वो तो है ही, मतलब उसके बिना तो ऑब्वियसली वो हुआ ही नहीं है, वो तो है ही एक कार्मिक अकाउंट, लेकिन अब उसको कैसे यू नो सेटल करना। एक होता है हमारे साथ कुछ होता है वो एक हमारा कार्मिक अकाउंट है, एक है हम एक कार्मिक अकाउंट सेटल करते हैं, दूसरा होता है हम नए कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट करते जाते हैं। यू नो दिस इज वेरी डीप, हमें ये नहीं पता चलता कि कब हम एक पहले किसी अकाउंट को सेटल कर रहे हैं या हम एक नया अकाउंट अब क्रिएट कर रहे हैं जिसको फिर हमें आगे जाके सेटल करना पड़ेगा। तो जो भी हमारे साथ बाह्य परिस्थिति आती है, सपोज दिस और एनीथिंग, इट्स अ कार्मिक अकाउंट विच आई एम सेटलिंग. लेकिन अब उसको जब वो सामने मेरे सिचुएशन आती है, अब मेरे अंदर किस तरह की थॉट्स जेनरेट होती है अपने प्रति और दूसरे व्यक्ति के प्रति, जैसे भाई साहब ने कहा कि गिल्ट फीलिंग जेनरेट हो सकती है, हेट्रेड फीलिंग, तो इस तरह के फीलिंग्स का अब निर्माण होना दूसरे के प्रति, ये एक नया कार्मिक अकाउंट स्टार्ट हो रहा है. यू नो, तो अब अगर मैंने किसी के प्रति हेट्रेड की फीलिंग जेनरेट की, फिर उसको भी मुझे सेटल करना पड़ेगा आगे. सो दैट्स व्हाई व्हेन वी से दैट वी आर सेटलिंग अ कार्मिक अकाउंट, दैट मीन्स द माइंड शुड बिकम स्टिल, यू नो, स्टिल. दैट्स व्हाई वी सेड फॉरगिव एंड फॉरगेट, बिकॉज फॉरगिव एंड फॉरगेट ही एक साधन है जिससे द माइंड कैन बिकम स्टिल. कोई एक नई और एनर्जी अकाउंट नहीं क्रिएट हो जाए सामने वाले व्यक्ति के साथ. एंड द हस्बैंड शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट द वाइफ्स फॉल्ट. ये सबसे बड़ी बात है कि भले वो ठीक है उनकी बेटी है, लेकिन फिर भी टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स. इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर कोई कमजोरी थी तो वो इसका दोष नहीं है, ये भी नहीं है कि इसके अंदर भी कोई कमजोरी है. यू नो, सो डोंट कनेक्ट द टू. ये जो उन्होंने किया कि इतने साल किसी और के लिए अपने अंदर भरी हुई नफरत उनके ऊपर निकालते गए, फादर के लिए भरी हुई नफरत अपने अंदर, उसको निकाल नहीं पाए, उसको चैनलाइज कर दिया तो एक डिफरेंट डायरेक्शन में चैनलाइज कर दिया.
यहाँ यही बात सामने, ये एक इससे जुड़ी ये बात निकलती है कि जब चाइल्ड अब्यूज होते हैं तो दे डोंट इवन रियलाइज यू नो हाउ लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट्स उस पूरी जो इंसिडेंट हुआ है उसका, क्योंकि कहीं कोई आउटलेट नहीं मिला. अब चाहे वो बड़ा हादसा था जो हमने पिछली बार बात की थी कि भाई कोई रेल एक्सीडेंट हुआ, कोई आग लग गई, कोई टेररिस्ट अटैक हुआ, उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक आउटक्राई भी हुई, कहीं हमारी आउटक्राई हुई, हमें एक आउटलेट मिल गया, हमने रोए और सब कुछ हो गया, निकल गया, गुस्सा भी कर लिया. इवन रेप विक्टिम ऑल्सो हैज यू नो वन वे, वन आउटलेट इज लाइक मेरे साथ गलत हुआ है. चाइल्ड अब्यूज में तो ये देखा गया है कि वो एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है. इवन बच्चा जो है वो एक्नॉलेज ही नहीं कर पाता खुद को भी कई बार कि मेरे साथ कुछ हुआ है, क्योंकि वो बहुत क्लोज रिलेशन में भी कई बार होता है. व्हाट टू डू अबाउट दैट?
नहीं नहीं, मेजर तो क्लोज रिलेशन में ही होता है. नहीं, इट हैज बीन सीन नो मे बी मोर देन 75% वो क्लोज रिलेशन से ही है. सबसे पहले तो बच्चे को ये ट्रेन करना कि बेनो एक सिंपैथेटिक लविंग टच एंड अब्यूजिव टच, व्हाट्स द डिफरेंस. बच्चे अधिकतर रिकग्नाइज भी करते हैं, इवन वी नीड टू ट्रेन देम. वह एक बात. दूसरी बात जो बच्चों में दिक्कत आती है कि पेरेंट्स कई बार एक्सेप्ट ही नहीं करते. मैंने ऐसे कई केसेस डील किए, समझो भी मामा ही अब्यूजिव है, भी माँ का ही भाई, और बच्चे ने जाके माँ को कहा तो माँ एक्सेप्ट ही, बोलते बेटे को चांटा लगा दिया कि भी मेरा भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, और तो बच्चा एकदम ही शांत हो जाएगा और पहले से ही डर होता है. तो इसलिए बच्चों को सुनना, उस बात को ठीक से एनालाइज करना कम से कम कि भी क्या बात है. और अधिकतर नहीं तो बच्चा झूठ नहीं बोलेगा. बड़े शायद हो सकते हैं कि और कोई फायदे के कारण कुछ झूठ बोले, किस पर ब्लेम लगाए, परंतु बच्चा ऐसे ही ब्लेम नहीं लगाएगा.
तो वही उस बात को सीरियसली लेने के डरता भी है वो बच्चा जो है. हाँ, उसमें वो हिम्मत ही नहीं है कि वो वहां तक जा पाएगा बच्चा. हाँ, हाँ, माँ तक भी जा पाए. सो वो जो पूरा इंसिडेंट है, माँ बाप को कितना केयरफुल ये भी रहना चाहिए कि कहीं मेरा बच्चा चुप तो नहीं हो गया. कई बार ये देखा गया है कि वो बच्चा चुप हो जाता है.
हाँ जी.
तो डज इट रियली हेल्प उनसे कंटिन्यूस पूछते रहना
या तो उनके साथ ऐसे रिलेशनशिप डेवलप करना कि बच्चा ओपन रहे, जो भी बात है उसकी वो माता पिता के सामने शेयर करे, न केवल अब्यूज की. स्कूल में भी कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम है और चीजें हैं, अगर बच्चे ओपन है, इफ यू हैव अ क्लोज रिलेशनशिप, तब वह सचमुच कहेगा उन बातों को.
एंड वंस इट्स एक्नॉलेज्ड, ऐसे शिवानी ये बात पता चल गया कि बच्चा अब्यूज से गुजर गया है, इंसिडेंट हुआ है, अब वो बड़ा होके किसी और कॉम्प्लेक्सिटी जो ये आई है, और भी कई तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज अब सामने आ रही हैं कि जो मेन रीजन हैज बीन कि वो अब्यूज रहा है बच्चा बचपन में, तो वो उसको किस तरह से काउंसिल करके, किस तरह की उसको, क्योंकि वो इंसिडेंट जो है वो कहीं घाव की तरह, एक वो रिश्ता हुआ घाव की तरह ना रह जाए, उसे वो भर के, वो फॉरगिव एंड फॉरगेट इतने छोटे बच्चे को समझाना इतना आसान नहीं होगा, उसके साथ किस तरह यू नो उसमें पूरा काउंसलिंग या पूरा सेल्फ टॉक या पेरेंट्स की टॉक हेल्प करे.
क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट में सेल्फ एस्टीम एकदम लो हो जाएगा. यू नो इट कुड बी दिस काइंड ऑफ अब्यूज इवन एनी अदर काइंड ऑफ अब्यूज ऑल्सो इवन जैसे कहा कि रिलेशनशिप पेरेंट चाइल्ड का कई बार वो एक फिजिकल अब्यूज होता है कई बार वायलेंट अब्यूज होता है नो अब्यूज कितने तरह से हो सकते हैं तो वो एक चाइल्डहुड में इतना एक सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है तो वो हमारी पूरी पर्सनैलिटी पर अफेक्ट करेगा और वो हमारे रिलेशनशिप्स में हमारी प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर निकल कर आएगा बिकॉज दैट इज माय पर्सनालिटी ना तो इस तरह के केसेस में आई थिंक उस बच्चे की सेल्फ एस्टीम को वापस यू नो उसको और ये पेरेंट्स ही कर पाएंगे वो रोल डेवलप यू नो करेंगे कि इट्स नॉट योर फॉल्ट इट वॉज समथिंग एल्स देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू नो यू आर वेरी फाइन आपकी कोई गलती नहीं थी इसमें ये सिर्फ बोलने से नहीं लेकिन उसको वो ना सिंपथी नहीं लेकिन एम्पावरमेंट सिंपथी भी कई बार फिर दूसरे को बहुत यू नो विक्टिमाइजेशन की फीलिंग में ले जाती है और उसको वो सिंपथी अच्छी लगने लग जाती है बट सिंपथी विल नॉट वर्क इन द लॉन्ग रन आपको एम्पावरमेंट देनी पड़ेगी उसको हम जितना वो फील करवाएं एंड नॉट आर्टिफिशियली पेरेंट्स को भी पहले ये कन्विक्शन होना चाहिए कि देयर वॉज नथिंग रॉन्ग विद द चाइल्ड कई बार हम दूसरे को एम्पावर करते हैं लेकिन बहुत आर्टिफिशियली यू नो सिर्फ बोल से बोल कभी एम्पावर नहीं करते हैं बोल तो सिर्फ एक माध्यम है जो एम्पावर करते हैं वो है थॉट्स कई बार हम ये सोचते हैं हमने तो दूसरे को अच्छा ही बोला उसकी विशेषता कोई हाईलाइट किया लेकिन अंदर सोच क्या थी यू नो जो एम्पावर कर रहा है वो है एनर्जी कि हम क्या वाइब्रेशंस अगर मैं आपको कहूं नहीं आप बिल्कुल ठीक है आपके साथ कुछ नहीं हुआ अंदर से सोचो बेचारी कनुप्रिया उसके साथ क्या क्या हो गया आई कैन नॉट एम्पावर यू
बिकॉज वो झूठ है ना
झूठ भी नहीं है लेकिन मेरी थॉट वो नहीं है मेरी थॉट फिर भी है कि आप बहुत बेचारे हैं आपके साथ यू नो सो आई विल हैव टू थिंक वॉट आई एम सेइंग यू नो एंड से ओनली दैट सो फर्स्ट पेरेंट्स को अपनी थॉट्स को बिल्कुल एम्पावर करना पड़ेगा फिर वो एम्पावरमेंट शायद बहुत इजीली हो जाएगी बच्चों की
आर्टिफिशियल बोल रहे इंसिडेंट
इंसिडेंट को रिपीट नहीं करें
इंसिडेंट नहीं रिपीट करे तो ठीक है लेकिन जो आपने पहले कहा कि भी यू आर नॉर्मल इट वॉज नॉट योर फॉल्ट नो यू आर एब्सोल्युटली हेल्दी ये जो कुछ चीजें हैं वो रिपीट करनी पड़ेगी क्योंकि सबकॉन्शियस में गया है
रीअफर्म करते जाएंगे
सबकॉन्शियस में क्या जाता है जो चीज इमोशनली होती है वह सबकॉन्शियस में जाती है
डॉक्टर पटेल यहाँ बच्चे के साथ किस तरह से पेरेंट्स डील कर रहे हैं ये बात तो हमें समझ में आई ये तो बहुत जरूरी हो जाता है हाउ अबाउट डीलिंग विद you know the person who has committed it because he is a relative he or she whoever I'm say the person is a relative very close relative and roz ka interaction hai what to do with that and agar wo long term life long relationship hai so bacche ka us vyakti ke sath relationship kya dobara develop kiya ja sakta hai karna chahiye ya What to do about that? Because that's a big dilemma.
The very first step, no, is to punish that person. It can be internal punishment even. No, sometimes you may like it such a close relation, ki a police complaint karo, aisa nahi karna chaho. Lekin internal ek strong punishment honi chahiye, taki unko lesson mile.
वो पनिशमेंट कैसे हो सकती है मतलब अगर हम सोचें तो सच में जैसे मामा की बात ली आपने तो क्या पनिशमेंट हो सकती है कैसे करें पब्लिकली उन्हें
पब्लिकली तो नहीं इंटरनली एक परिवार में भी एक स्ट्रांगली बताया जाए इवन नो फिजिकल पनिशमेंट कैन बी बीटन ऑल्सो आई थिंक कुछ एक्सट्रीम है तो इनफैक्ट नो यू शुड नॉट हेजिटेट
तो देन
पुलिस कंप्लेन करने में भी फिर तो हेजिटेट नहीं
वो व्यक्ति भी मेंटली स्टेबल नहीं है ना उतना तो ये पनिशमेंट से रियली बहुत बेनिफिट होगा
लेकिन रियलाइजेशन तो होगा ही
एक रॉन्ग
अगर लगता है तो फिर ट्रीटमेंट भी करनी मतलब डिफरेंट केसेस में डिफरेंट अप्रोच हो सकता है कि आपको लगता है कि उनमें भी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है न केवल डिप्रेशन पर्सनालिटी ड्रॉबैक्स है सिजोफ्रेनिक टेंडेंसी लग रही है तो उनकी प्रॉपर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी कराई जाए
पनिशमेंट नहीं हुई तो दैट विल बी रिपीटेड
हाँ वो एक बात और दूसरी बात तो ये कि भी सारे समाज में अगर मैं स्ट्रांग एक्शन लूंगा तो और भी स्ट्रांग एक्शन लेंगे तो डिफरेंट स्टोरी अभी मुझे याद आ रही आप बोल रहे हैं बड़ा मीडिया में भी आया था कि जो नहीं डावरी की ये बात थी कि भाई मैरिज हो रहे थे तभी ही उन्होंने कहा कि भी अभी इतने पैसे दो तो ही हम मैरिज कराएंगे और लड़की को पहले तो पता नहीं चला उसने सोचा कि शायद मेरे मैरिज है इसलिए माता पिता नर्वस हो रहे हैं लेकिन जब अंदर में सारी बात होने लगी तो उसको ये हुआ और उसने हिम्मत करके पूछा जब पेरेंट्स ने ये बात बताई कि ऐसा ऐसा है आपने भी पढ़ा होगा
पेपर में काफी, हाँ, बट दैट रियली हेल्प्ड, यू नो,
दैट हैज टू बी डन. एक ने किया तो अभी दूसरों में भी हिम्मत
आई और वो पब्लिकली मांगने की हिम्मत खत्म हुई. यू नो, एक जो अथॉरिटी से मांगा जाता था वो कम से कम खत्म हुआ कि ये कोई आपका अधिकार नहीं है.
हाँ जी हाँ.
यहाँ एक और बात मैं हम ये जाना चाहेंगे,
तो यहाँ भी करना चाहिए एब्यूज में भी. वेल, मेरे रिलेटिव भी है तो इससे अब्यूज भी हो तो 5-10 किस्से हो गए तो वो टोटली स्टॉप होगा.
कहीं ना, क्योंकि जो जिसने अब्यूज किया है उसे ये कॉन्फिडेंस होता है कि ये बच्चा क्यों बोलेगा, कैसे बोलेगा. और मैं
बहन है वो मुझे कुछ नहीं करेगी.
डॉक्टर पटेल, यहाँ ये बात और जरूरी हो जाती है कि जो इस तरह के बच्चे हैं जो इससे गुजर रहे हैं उनके सामने उस वक्त के जो सर्कमस्टांसेस, उस वक्त के उनके रिएक्शन है वो तो फिर भी पता चल जाते हैं कि सोशली भी कम बात करने लगते हैं, उनके एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आने लगती है, पढ़ाई में इंटरेस्ट हो जाता है. लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इवन पेरेंट्स नीड टू नो, इवन द विक्टिम जो उससे गुजरा है उसको भी पता होना चाहिए कि क्या कहां तक लीड कर सकती है.
अगर प्रॉपर काउंसिलिंग ना हो, अगर ठीक से थेरेपी हो, काउंसिलिंग हो, तो बच्चा कंप्लीटली नॉर्मल हो सकता है. और ठीक से ना हो तो एक तो डिप्रेशन तो होगा ही होगा, साथ साथ पर्सनालिटी डिफेक्टिव हो जाएगी. वो पर्सनालिटी के कई परवर्जन्स हैं, वो हो सकते हैं, वो सिजोफ्रेनिक भी हो सकता है आगे चल के उस समय, क्योंकि अंदर में कॉन्फ्लिक्ट तो चलना ही चलना है. आगे चल के वो सिजोफ्रेनिक भी हो सकता है, इसलिए बहुत ही सीरियस बात है कि जिसको हमें ठीक से डील करना चाहिए.
कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा. और बिटरनेस नहीं, मैंने कहा बड़ा नहीं भी हो लेकिन एक छोटा इस तरह के ऊपर, ये भी छोटे ही नहीं है लेकिन ये इफेक्ट्स बहुत लाइफ लॉन्ग चलेंगे.
शिवानी, जब हम बात ये कर रहे हैं कि जो जागरण की बात करते हैं, जो इंटरनल जर्नी की बात करते हैं, वो बहुत पहले से ही शुरू होनी चाहिए. वी बीन टॉकिंग अबाउट इट. इन केसेस में तो ये जो इंटरनल काउंसलिंग है या पेरेंट्स के साथ बैठ के ये जो इंट्रोडक्शन टू अगेन यू नो स्पिरिचुअलिटी और पूरा एस्पेक्ट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड इंटरनल काउंसलिंग,
एंड आई थिंक मेडिटेशन विल ऑल्सो हेल्प अ लॉट.
सो व्हाट हैज टू बी डन, हमसे बच्चे के साथ किस तरह की बातचीत करनी बहुत जरूरी है, बच्चा अपने आप से भी क्या बात करे,
क्योंकि बिटरनेस बहुत भर जाएगी ना अंदर. और वो बिटरनेस को अगर नहीं निकाला गया अभी तो फिर वो बिटरनेस लाइफ लॉन्ग आप कैरी करते हो, वो फिर आपके और रिलेशनशिप्स में रिफ्लेक्ट करनी शुरू हो जाएगी. तो दैट बिटरनेस कैन ओनली बी रिप्लेस्ड बाय लव. सही, हील अगर करना तो उसको बिटरनेस को लव से रिप्लेस करना होगा, हमें उस सारी बिटरनेस को बाहर निकालना पड़ेगा. तो इसमें पेरेंट्स, लेकिन अगेन मेडिटेशन, बिकॉज गॉड्स लव यू नो विल हील एनी वूंड. क्योंकि परमात्मा का प्यार, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो हो जाती है आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, यू नो एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जैसे सेट होने लगता है, आप फील नहीं करते कि आप वर्दी है क्योंकि किसी ने आपके साथ इस तरह से किया, तो आपको अंदर गंदा सा महसूस होने लगता है. तो आप भले लोग नहीं आपको शो करें लेकिन आप ही लोगों के सामने जाने से या इंटरेक्ट करने से शायद थोड़ा हेसिटेट करते हैं. लेकिन परमात्मा का प्यार क्योंकि अनकंडीशनल होता है और आप उसको अनुभव करना शुरू करते हैं मेडिटेशन के दौरान कि हम चाहे कैसे भी हैं, चाहे हमारे अंदर क्या कुछ नहीं है, परमात्मा मुझे बहुत प्यार करता है. और वो ऐसे भरता जाता है मेडिटेशन, जब हम यू नो परमात्मा से रिलेशनशिप जो डेवलप होती है वो प्यार ऐसा भरता है कि जो भी इस तरह की जो बिटरनेस है, यू नो यू फील समथिंग तो दूसरी चीज को तो निकलना ही पड़ेगा, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं रह सकती हैं. तो वो प्यार भरता जाता है, कड़वाहट खत्म होती जाएगी. बिकॉज नहीं तो काउंसलिंग ये सब चीजें तो बहुत यूजफुल है लेकिन फिर भी टेम्पररी है और थोड़ी सी चैलेंजिंग है. लेकिन ये बहुत इजी है व्हेन यू गेट अ सोर्स ऑफ लव, यू नो वो इतना गशन कर देगा, इतना प्यार आपके अंदर भर देगा कि वो इतनी सी जो कड़वाहट है वो खत्म हो जाएगी.
बिल्कुल. और सबसे बड़ी बात कहीं बच्चे को कंटिन्यूस ये भी रहे कि इट्स नॉट समथिंग एबनॉर्मल विच हैज हैपेंड,
नथिंग, दैट्स व्हाट एक्सेप्टेंस उसी में आ जाएगी ना सारी.
कुछ ऐसा नहीं हो गया कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, यू नो लाइक इट इज ओके, लाइफ स्टिल गोज,
यू नो इट कैन बी ट्रीटेड लाइक मे बी लाइक एन एक्सीडेंट.
हाँ,
यू नो इट कुड बी ट्रीटेड लाइक एन एक्सीडेंट कि ये एक्सीडेंट हो गया है. यू नो कोई बात नहीं, इट्स नॉट द एंड एंड नथिंग इज रॉन्ग, आई एम स्टिल परफेक्ट internally also and externally also, move on. तो उसको उस तरह से एक ट्रीट करके आगे चल सकते हैं.
पहलू जो इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को एडमायर भी करो, डांटने के बदले कई बार डांट देते हैं कि ऐसा तुम क्यों कर, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारा फॉल्ट है.
वो तो बहुत ही डांट,
उसको एडमायर करो कि तुम करेजियस हो, तुमने अच्छा किया. कि इसी से तुम जीवन में भी और प्रॉब्लम्स आएंगे उसको भी आप ऐसे फेस करोगे और आप महान बनोगे, इस प्रकार से बच्चे में तो उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी।
एंड इट वॉज जस्ट अ प्रॉब्लम, ये भी एहसास उसको दिलाओ कि ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा हो गया जिंदगी में कि सब बदल गया,
एक्सीडेंट है जिससे।
हाँ, जैसे हम बच्चों को तो समझा सकते हैं कि जीवन की यात्रा में ऐसे ऐसे ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, ये भी एक ऐसा था, इसको हमने हटाना है, आगे बढ़ना है, एंड ये ऑब्स्टिकल विल ओनली मेक यू स्ट्रॉन्गर, डोंट लेट इट मेक यू weaker, come out stronger and be ready, you know, for other challenges to come. So it's all that talk that we will have to do with the child and the child will do with himself.
और एक पूरा issue है कि वो prevent कैसे करे। वो उसे prevent करने के लिए तो है कि भी बच्चे को सिखाना पड़ेगा।
Constant वो आपने बताया।
भी हो तो नहीं, even you shout।
Yes।
ऐसा नहीं, उसका भी सहन नहीं कर लो।
और वो टच की जो आपने बात,
वो ये बात है, वो शुरुआत है, समझो, और भी वो abuse बढ़ गया कभी तो तब कई बार बच्चे तभी शाउट नहीं करते, जोर से रोते नहीं, किक ही वट एवर नहीं, उस समय आप करो तो मोर देन 50% चांसेस आर देयर दैट यू विल बी सेफ।
तो रिएक्ट, लर्न टू रिएक्ट। एक्चुअली यहाँ एक और मेल आया, हम डिप्रेशन की ही बात कर रहे हैं, तो ये लेडी है, बैंगलोर से है, एंड शी सेज आई एम वर्किंग इन एन आईटी कंपनी, और जो मेरे मेल कलीग मेरे साथ हैं, खासकर एक के साथ, मैं अब इतनी डिप्रेस्ड हो चुकी हूँ क्योंकि वो कांस्टेंट मुझे जो है हैंकरिंग करते रहते हैं कि मेरी प्रोग्रेस जितनी भी है वो इसीलिए क्योंकि मैं एक औरत हूँ, और कंटिन्यूस उनका सब लाइन जो है ना वो अंडरकरंट चलता रहता है, यू नो इट इज लाइक एक उस सिचुएशन में पहुंच गया है कि वो अब्यूज ही लगने लग गया है, आई डोंट फील लाइक गोइंग टू ऑफिस, क्योंकि कॉन्स्टेंटली वो मुझे मेरी औरत होने का एहसास दिलाते रहते हैं। तो मुझे कई बार लगता है कि मेरी प्रॉब्लम यही है कि आई एम अ वुमन, यू नो ही ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूट ऑल माई अचीवमेंट्स टू मी बींग अ वुमन, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, और मैं अपने बॉस के पास भी अगर जाती हूं तो मैं क्या कहूं, तो आई फील सो डिप्रेस्ड कि वाई आई एम बींग विक्टिमाइज अगेन, you know, like these kind of depressions at workplace, especially for women, बहुत ज्यादा देखा गया है कि ये सामने आते हैं, तो इनको क्या कहा जाए?
इसको abuse भी कहेंगे, लेकिन अभी perspective ये होना चाहिए, अगर ये महिला ये सोचे कि भल वैसा बोल रहा है, 10% उसमें truth भी है, परंतु भी मैं तो आगे बढ़ रही हूं, वो एक psychologically मेरे साथ play कर रहा है, तो वो मैं अलाउ नहीं करूंगी,
लेकिन कॉन्स्टेंट
एक्सेप्ट नहीं करूंगी।
देखिए कॉन्स्टेंट जब आपके कलीग होते हैं, एक्चुअली इनकी प्रॉब्लम मैं समझ सकती हूँ कि कॉन्स्टेंट कलीग जो है जिसके साथ आपको कॉन्स्टेंट काम करना है, औरत कहीं ना कहीं जब बाहर निकली है तो एक प्रेशर के साथ ही निकली है कि मुझे प्रूव करना है अपने आप को, अभी भी थोड़ा वो इस प्रेशर में जी रही है, जब कॉन्स्टेंट वो कोई बोलता जाता है तो आपकी जो पूरी जो वर्क कर रहे हैं कहीं ना कहीं प्रेशर कर रहा होगा उनको,
तो एसर्ट करो।
हाँ डेफिनेटली,
तब अपनी बात को बताओ कि ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, नहीं भी है मुझे कुछ एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है, बीइंग अ वुमन देयर में भी सम डिसएडवांटेजेस जो आप देख नहीं रहे, वो डिसएडवांटेज को ओवरकम करके मैं आगे आई हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ,
सबमिसिव रह जाती है, तो हाउ स्ट्रांग शी शुड बी एक्चुअली,
अगर तुरंत थोड़ा सा मेंटली प्लानिंग करके उनको सुना दे वह बात, तो भी कुछ न कुछ तो कमी जरूर आएगी, सीनियर्स को भी बताने में हर्जा नहीं है कि भी इस प्रकार से वह साइकोलॉजिकली मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो अगर सीनियर्स भी कुछ एडवाइस देंगे तो इस प्रकार का जो वर्बल अब्यूजेस है तो कहेंगे ये वर्बल अब्यूज उनका कम हो सकता है।
बिल्कुल सिस्टर शिवानी, व्हाट वुड यू से?
आपने कहा कि वो औरत है, उसको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा,
नहीं करना पड़ेगा नहीं, लेकिन आज के वक्त में अभी भी ये जनरली देखा गया है कि वो कर रही है, करना पड़ेगा इज लाइक नॉट एट ऑल।
Between a male and a female, physical strength pe there can be a difference. Mental strength pe it's not, because mental strength atma ki hai. And atma male ya female nahi hai. Aaj aap ek female costume mein hai, isse pichle 30 years back aap ek male costume mein ho sakti thi, tab aapki strength alag thi just because you were wearing a different costume. No, you were the same. And अगर आज हम really detach होकर देखें, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम कह सकते हैं कि you know औरतें ज्यादा strong है या male ज्यादा strong mentally, फिजिकल यस बॉडी स्ट्रक्चर दैट्स फाइन, बट उसको तो अब तो हम उसको भी ओवरकम कर पाते हैं, लेकिन जहां ये वर्क प्लेस एक आईटी कंपनी में आपकी कोई फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं यूज हो रही है, आपकी मेंटल कैपेबिलिटी, आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो मेल और फीमेल में डिफरेंट नहीं हो सकती है बिल्कुल भी, ये खुद हम इस डिफरेंस को क्रिएट करते हैं, इट्स द वुमन आई थिंक ये अपने आप को यू नो हम क्रिएट करते हैं जब हमें ये अंडरस्टैंडिंग आती है कि आई एम अ सोल you know and so is the other person, there is no difference. Hum dono same hain apni capacity ke andar, so there is no question ki dusra hame daba sakta hai, dusra hame nahi suppress karta hai, hum khud apne aap ko suppress hone dete hain. Dusre ko jo comment pass karni hai wo pass kar de, I can say anything to you, ab usko lekar aapko kya karna hai. I can say Kanupriya you are very weak, to kya hua, बोलने से आप वीक हो गए? नहीं, आपने उस सेंटेंस को लिया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया और आप सोचने लग गए कि मैं तो हूं ही कमजोर, मेरे से तो नहीं हो सकता, मैं तो इस बात का फायदा उठा रही हूं. वो आप तब सोचेंगे जब आप सचमुच फील करते हैं यू नो उस तरह की कोई थॉट. तो जब स्पिरिचुअलिटी हमें एक्सप्लेन करती है कि कोई डिफरेंस ही नहीं है, आई एम एनर्जी एंड एनर्जी हैज अनलिमिटेड पोटेंशियल, उसको हमें यूज करना है, एंड अगर उस सामने वाले व्यक्ति में पावर है मुझे सप्रेस करने की, तो मुझ में पावर है कि यू नो नॉट टू गेट सप्रेस्ड, आई कैन स्टैंड ऑन माय ओन.
आई थिंक एट टाइम्स यू नो व्हेन वी टॉक लाइक दिस, मुझे लगता है कि सारी जिंदगी हम इन
इट्स बिकॉज ऑफ दीज बिलीफ सिस्टम्स नो अगेन, ये सारे जो हमने बिलीफ सिस्टम
करते हुए निकाल देते हैं, एंड द रियल पोटेंशियल ऑफ माय सोल आई द सोल एक्चुअली, कि उसको हम नहीं रियलाइज कर पाते कि किस लेवल तक हम पहुंच सकते हैं.
इवन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी तो वुमेन में ज्यादा है, इवन इट इज प्रूवन, ब्रेन पावर इफ यू से इंटेलेक्चुअल पावर इज मोर, इसलिए तो लड़कियां टॉपर्स है.
क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनके कई और बाकी चीजें पेशेंस है यू नो लाइक
और एक्चुअल कैपेसिटी
वैल्यूज,
इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इज ऑल्सो बेटर
राइट, बट वैल्यूज भी अगर हम ले आई थिंक दे आर सेम इन बोथ, क्योंकि यू नो पावर्स भी दे आर सेम इन बोथ, इट्स जस्ट दैट कौन अपने अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से. इसी जैसे आपने कहा कि वुमेन में ज्यादा पेशेंस है, या हमने समझते आज तक सुनते आए कि वुमेन में ज्यादा एडजस्टमेंट पावर है, नो इट्स लाइक बिकॉज वो लाइफस्टाइल ऐसे रही इतना टाइम कि उन्होंने अपने एडजस्टमेंट पावर को ज्यादा यूज किया, क्योंकि सोसाइटी ने उनको उस तरह से किया. बट दैट डजंट मीन कि एक वुमेन के अंदर ज्यादा एडजस्टमेंट पावर है और एक मेल के अंदर नहीं है, इट्स जस्ट दैट द मेल डजेंट एडजस्ट सो मच बिकॉज ही इज यूज टू गेटिंग हिज वर्क डन, लेकिन द फीमेल इज यूज टू ऑलवेज एडजस्टिंग, बट द पावर विल डेफिनेटली बी द सेम इन बोथ ऑफ देम, द सोल इज द सेम, इट्स जस्ट दैट इन्होंने ज्यादा यूज किया और इन्होंने उतना नहीं, लेकिन अगर आप अभी जेनरिक देखें तो दोनों में सेम चीज है, डिफरेंस नहीं हो सकती, पावर्स एंड वैल्यूज दोनों में सेम होंगे क्योंकि आत्मा की चीज है वो.
बिल्कुल, अगेन यू नो द बेस ऑफ एवरीथिंग कम्स डाउन टू रियलाइजेशन, यू नो सेल्फ रियलाइजेशन, कि क्या किस तरह से हम खुद को ये रियलाइज करवाएं कि एक्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है, तो डिप्रेशन के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, समथिंग लाइक एस यू लाइक टू से डॉक्टर साहब.
बिल्कुल, ये बातें सही है. इस केस में तो मैं ये भी कहूंगा कि भी वो खुश भी हो कि भी अच्छा है, मुझे कुछ एडवांटेज मिल रहे हैं, मैं आगे बढ़ रही हूं, उसको करना है वो करने दो, दिस इज जस्ट एन सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड विच शी कैन डेवलप.
द अदर पर्सन इज एक्चुअली साइकोलॉजिकली प्लेइंग विद हर यू नो, तो डोंट लेट समबडी प्ले विद यू
यू नो. हम फिर वही अधिकार किसी और को दे रहे हैं,
हम किसी को रिमोट कंट्रोल दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि मेरा माइंड उस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा और जो मेरी प्रोफेशनल यू नो लाइफ है उस पर उसका इफेक्ट आएगा. तो जो वो चाहते हैं वो सक्सीड हो जाएंगे, क्योंकि मैं खुद अपने आप को पीछे लेकर जाऊंगी, कोई और नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि मैंने अपने माइंड को इस नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स की तरफ ले गई हूं. सो ही विल अचीव व्हाट ही वांट्स एंड आई एम गिविंग हिम द पावर टू डू.
तो आप इनके लिए यही सलाह रहेगी कि ये जो कह रही है कि मैं छुट्टी लेके बैठ जाना चाहती हूँ, वो ना
वही चाहते हैं,
ज्यादा काम करने लगे, ज्यादा वक्त गुजारे वहां पर और खुश रह के उनके साथ भी अच्छा सा यू नो अगर व्यवहार करेंगी तो शायद उनको भी रियलाइज हो कि नाराज क्यों नहीं हो रही है
और फिर फाइनली गिव अप कर देगा.
एक बार एसर्ट जरूर करें.
एसर्ट ये एक ऐसा शब्द है जिसे हमने अभी पूरी तरह से नहीं एक्सप्लोर किया है. हमने एंगर को भी जाना था, एंगर भी कहीं ना कहीं आपने कहा था कि एंगर जब अपने ऊपर होने लगता है तो वो डिप्रेशन को लीड करता है, और एसर्टिवनेस जो है वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, एंगर उसी का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है. क्या है एसर्टिवनेस, क्या है एंगर, इसको ज्यादा डिटेल में अगली कड़ी में जरूर जानेंगे, लेकिन फिलहाल डॉक्टर गिरीश पटेल, सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. बहुत कुछ हमें समझ में आ रहा है। ये हंसती मुस्कुराती जिंदगी हम और आप सब पा सकते हैं। कोशिश यही करते हैं कि हर लम्हे को जिए, लेकिन जब ऐसे मुकाम आते हैं कि लगता है सब कुछ खत्म हो गया, तब खुद से बात करना शुरू करें और शायद जो दोस्त हमारे अपने पास ही है, जो अंदर है, वो हमारे चेहरे की मुस्कुराहट फिर ले आए, जिंदगी को फिर से उत्सव के रूप में हमारे सामने ले आए। आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। आप हमें फोन पर या ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। इसी के साथ अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही। अगली कड़ी में असर्टिवनेस और एंगर, इसमें क्या फर्क है और कितना जरूरी है असर्टिव होना और कितना जरूरी है कि गुस्सा ना करें, इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।